تفسیر سورت متففین، مکی سورت ہے، 36 آیات، 1 رکوع، الفاظ اور کلمات کی تعداد 173، حروف 758 ہیں. اس کا نام پہلی ہی آیت سے لیا گیا، ویل للمطففین. اسے سورت تطفیف بھی کہا جاتا ہے، دوسرا اس کا ایک نام بھی ہے. اور اس حصے میں جو ہے وہ اس کا زمانہ نزول، اس حصے میں جو ہے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کم ناپنے اور تولنے کا مرض بری طرح پھیلا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین نازل کی اور لوگ بہت اچھی طرح ناپنے تولنے لگے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے، اور کیونکہ رائے یہی ہے. لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کوئی مسئلہ ہے یا وہاں پہ لوگ کسی گناہ یا کسی چیز میں مبتلا ہیں تو کوئی اس کو پڑھ کر سنائے اور پھر لوگ کہیں کہ ان کو یہ لگے کہ جیسے ابھی یہ نازل ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مدینہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی، بلکہ یہ مکی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، سورت متففین. اور اس سورت کے اندر اس کا مضمون کیا ہے؟ اس کا موضوع بھی آخرت ہے. ویل للمطففین، تباہی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. کیونکہ ویل جو ہے یہ خرابی اور تباہی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے. آغاز بڑا ہی زبردست ہے اور بڑے سخت انداز میں اللہ تعالی شروع میں ہی کہتے ہیں ویل للمطففین. آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک جن کے اندر یہ متففین کی بیماری پائی جاتی ہے، اللہ رب العزت جو ہیں ان کے حال پر افسوس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ رب عظیم کے سامنے کھڑے ہوں گے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ متففین ہے کیا، متففین کیا بلا ہے، یہ کیا بیماری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ اختیار کیے. یہ لفظ توئے فافا سے باب تفیل کا مصدر ہے. تو متففین کیا ہے؟ باب تفیل کا مصدر. اور متففین اسی سے پھر اسم فاعل کا صیغہ ہے. تطفیف کسے کہتے ہیں؟ تطفیف کے معنی ہوتے ہیں کہ ناپ تول میں گھٹانا، کم کرنا. اصل میں تفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس سے بھی آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جیسے ایک برتن ہے تو اس میں جو ہے کوئی چیز جب ناپ کر دی جائے تو کنارے سے ذرا نیچے دی جائے، حالانکہ میئرمنٹ اس کی کیا تھی کہ کنارے تک اس کو بھر کر دیا جاتا، تو بہت معمولی سی جو ہے نا کمی کی کہ جو لینے والا اس کو احساس بھی نہ ہو. اسی طرح جب تول کر دی جائے تو اب یہ نہیں کہ جو ہے وہ جو ہے کافی زیادہ چیز جو ہے اس میں کمی کر دی، بلکہ کیا ہے کہ تولنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ کمی کی جائے. تو اس کے معنی کے اندر، تطفیف کے معنی میں اصلا ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. کام کرنے والا جب ناپ کر دیتا ہے یا تول کر تو بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے اور ہر خریدار کے حصے سے تھوڑا تھوڑا مال اڑاتا چلا جاتا ہے. خریدار بیچارے کو نہیں پتا چلتا کہ جو اس نے خریدا ہے تو دوسرے نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا ہے. اور ایک قوم جو ہے اس جرم میں اس پر عذاب بھی آیا تھا، وہ کون سی قوم تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. تو شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کا ان کو ٹائٹل دیا گیا، اور بڑی اچھی انہوں نے تقریریں کی اور اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن اس وقت کی قوم جو تھی وہ تجارت کے اندر مال تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اور یہی تطفیف کی بیماری جو ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو کیا تھا کہ اہل مکہ میں اور مدینہ والوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی تھی. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ موتا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجدے وغیرہ پورے نہیں کرتا, جلدی نماز ختم کر ڈالتا ہے, تو آپ نے اس کو فرمایا لقد تففتا, تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی. تو یہ تطفیف جو ہے یہ صرف ناپ تول میں ہی نہیں ہے, اور کس میں ہے, نماز اور جو ہے عبادات میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا صحیح حق نہ ادا کیا جائے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے, یہ یہاں تک کہ نماز, وضو اگر صحیح سے نہ کیا جائے کہ اعضاء پورے اچھی طرح گیلے نہیں کیے, خشک رہ گئے, تو ان میں بھی تطفیف پائی جاتی ہے. اسی طرح طہارت کا خیال نہ رکھا جائے, پھر اسی طرح حقوق دینا, جیسے شوہر جو ہے وہ بیوی سے اپنا تو حق چاہے لیکن بیوی کے حقوق میں تطفیف کرے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ بیوی جو ہے وہ اطاعت نہ کرے یا فرما بردار نہ بنے, لیکن جہاں اپنے حقوق کی فکر کرنی چاہیے وہاں اپنے فرائض کے بارے میں بھی جو ہے سنجیدہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح شوہر سے بیوی جو ہے وہ بہت سے مطالبات رکھے لیکن شوہر کے حقوق میں جو ہے وہ کمی کر جائے, تو ڈنڈی مارنا, کمی کرنا. اور کیسے کی جاتی ہے, مزدور اور ملازم کوئی بھی جو جاب کرنے والا ہے, اب اگر وہ اس میں سے وقت چرا لیتا ہے, ٹائم ہے جب ایگریمنٹ ہوتا ہے, جب جاب ملتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹائم جو ہے 7 سے لے کر 4 بجے تک ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے آفیسر نے تو آنا نہیں, 7 بجے کوئی بھی نہیں آتا, چلو میں 9 بجے جاؤں گا, میں 8 بجے جاؤں گا. پھر آفس اس کو کسی, اس کا آفیسر اس کو کسی کام سے بھیجتا ہے, اس میں وہ پھر گھر بھی آ جاتا ہے ٹائم چرا کر. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ وہ جو فوٹو کاپی کی مشین ہے یا گاڑی ہے اس کا استعمال ہے آفس کی چیزوں کے لیے, اب وہ کیا کرتا ہے کہ فوٹو کاپی میں گھر کی چیزیں فوٹو کاپی کرتا ہے, دوست احباب کی, گاڑی کا استعمال وہ پرسنل کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تطفیف کے اندر آتی ہیں, یہ ڈنڈی مارنا, کمی کرنا, کہ پتا کون سا چلے گا. جو متقی لوگ ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہ نہ پیسہ چراتے ہیں, نہ وقت چراتے ہیں, نہ مال چراتے ہیں, وہ وقت محنت کسی چیز میں کمی نہیں کرتے. مفسرین تو کہتے ہیں سستی کرنا بھی تطفیف میں آتا ہے, کہ جو فرض جتنی چستی سے ادا کرنا چاہیے اور اگر لوگ سستی کریں تو یہ بھی تطفیف ہے. اور اہل علم میں یہ تطفیف پائی جاتی ہے نا, اہل علم بڑی سستی کرتے ہیں, محنت نہیں کرتے جو اس کا حق ہے. تو اپنی ملازمت کے فرائض پورے کرنا یا ویسے, یہ ساری چیزیں تطفیف میں آتی ہیں. اور یہ تطفیف کی بیماری بہت ہی جو ہے وہ بری بیماری ہے, اور اس میں امت مسلمہ بری طرح مبتلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کی منڈی میں تشریف لے گئے, تو ایک تو کیا ہو رہا تھا کہ ایک غلہ جو تھا نا وہ تولا جا رہا تھا, اسے آپ نے ہدایت کی زن و راجح و ارجح, یعنی تول اور تھوڑا سا جھکتا ہوا تول. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کپڑا جب بیچتے ہیں تو اب میٹر سے تھوڑا سا کم دیا اس نے, گز سے تھوڑا سا کم, آپ نے جتنا کہا تھا 2.5 میٹر, گھر آئیں تو وہ 2.25 میٹر ہے, آپ نے کہا 3 گز چاہیے, گھر آئیں تو وہ 2.75, تھوڑا کم نکل آیا. تو اکثر لوگ ایسا کام جو ہے وہ کرتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے اسی چیز کی جو ہے وہ طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے. وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ, تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. المطففین جو ہے یہاں پہ, متففین کیا ہے, یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے, اور یہ کون ہے, الَّذِينَ اِذَقْتَالُوا, کہ ان کا حال یہ ہے, ازک تالو کیل سے ہے, کاف یا لام, کہ جب یہ لیتے ہیں, کیل کا مطلب ہوتا ہے ماپنا, لینا, الناسی لوگوں سے, کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں, یستوفون, پورا پورا لیتے ہیں, کہ ناپ کر لیں سے لوگوں, کہ لوگوں سے اب لے رہے ہیں تو چاہتے ہیں پورا پورا دیا جائے, یس توفون, پورا پورا وفا کی جائے. वाइजा कैलूहम, और जब नाप कर देते हैं उनको, अब खुद देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, मयार बदल गया, माप कर देते हैं उनको, तो इकतालू और कालूहम दोनों का रूट क्या है? कैफ या लाम। औ वजनूहम, या वो तोल कर जो है वो देते हैं इनके लिए, तो युखसिरून, तो कम देते हैं, खसारा, कमी करते हैं, डंडी मारते हैं। यस्तोफून युखसिरून, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अला यजुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, आया वो नहीं जानते, क्या उन्हें यकीन नहीं है, क्या शक में है ये लोग कि ये वो लोग हैं कि ये उठाए जाएंगे। मबऊसून, और मबऊसून जो है ये इसम मफूल है, मफूल के वजन पर मबऊसून, और मबऊस की ये जमा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इन्हें जो है ये कब्रों में से उठा खड़ा किया जाएगा, उलट पलट कर दिया जाएगा ना कब्रों को, बहुत सी रत आपने पीछे पड़ा, तो अब यह है कि उनको जो है वो उठा खड़ा किया जाएगा। अब आप देखिए कि यहां पर तिजारत के अंदर लेन देन में जो कमी है और डंडी मारना है, इस पर जो है वो अजाब का जिक्र किया जा रहा है और डराया जा रहा है कि तुम एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे और तुम्हारा हिसाब किताब होगा। तो बाज लोग क्या कहते हैं कि दीन सिर्फ नमाज, रोजा, हज और जकात है, वो तिजारत में दीन के लाने को बहुत बुरा समझते हैं। वो कहते हैं ताजिर अगर सच बोले तो फिर उसकी तिजारत नहीं चल सकती, अगर वो उसमें मिलावट ना करे तो तिजारत नहीं चल सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, मन गश्या फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। इसी तरह जब इस्लाम आया तो इस्लाम जो है उसने मईशत, माशरत, सियासत, तिजारत, घरेलू जो निजाम था, खलवत जलवत, घर के कमरे से लेकर अंदर जो बिल्कुल प्राइवेट कमरा है उससे लेकर हुकूमत के तख्त तक, अदालत तक, हर जगह के कानून और अहकामात जो थे वो जारी हुए और वो नाफिज हुए। और दीन, दुनिया को दीन से अलग करने का नाम दीन नहीं है, दुनिया जो है वो क्या है, एक जगह है, दीन क्या है, वे ऑफ लिविंग, तो किसी जगह पे रह के ही वे ऑफ लिविंग पर अमल करना है ना, तो दीन और दुनिया अलग नहीं हो सकते। तो दुनिया में रहते हुए जो है वो अल्लाह के कानून जो है उस पर चलना चाहिए, और जो कौमें और जो लोग अल्लाह के कानून को छोड़ देते हैं, मसलन यही बीमारी जो मुतफ़फ़ीन की बीमारी है, जो तदफीफ की बीमारी है कि नाप तोल में चोरी छुपे कमी, जब कोई कौम इसमें मुब्तला हो जाती है तो फिर होता क्या है, क्या उसको सजा मिलती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या फरमाया कि यानी ऐसे गुनाह करने की वजह से कौमें हिलाक हो गई। आपने एक मौके पे फरमाया कि ये दोनों चीजें तुम्हारे सुपुर्द की गई हैं, इन दोनों के बारे में गुज़िश्ता उम्मतें हिलाक हुई हैं, और क्या है ये जो है वो नाप तोल में कमी करना, या वजन करते हुए जब कोई चीज दी जाए ना तो उसमें कमी करना। लिक्विड चीजों को नाप कर दिया जाता है और वैसे जो ठोस चीजें होती हैं उनका वजन किया जाता है। तो जो कौमें इस सिलसिले में मुब्तला हुई उनको जो है वो मिटा दिया गया। अच्छा, फिर इसमें भी ये बात पता चलती है कि जब किसी कौम में ये बीमारी पाई जाए तो जैसे नाप तोल में कमी, तो अल्लाह ताला उनका रिस्क कता कर देते हैं, उनका रिस्क जो है वो छीन लिया जाता है, कम कर दिया जाता है, दुश्मन को उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है, कहत में अल्लाह उनको मुब्तला कर देता है। जो लोग नाप तोल में कमी करने लगे अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला कर देता है। पांच गुनाह जो है ना जो करते हैं उनको पांच सजाएं मिलती हैं। नंबर एक, जो अहद शिर्क नहीं करता है अल्लाह उस पर उसके दुश्मन को मुसल्लत और गालिब कर देता है। नंबर दो, जो कौम अल्लाह के कानून को छोड़कर दूसरे कवानीन पर चलती है, फैसले करती है, उनमें गुर्बत, फक्र और एहतियाज आम हो जाता है। नंबर तीन, जिस कौम में बेहयाई और जिना आम हो जाए उस पर अल्लाह ताला वबाई अमराज मुसल्लत कर देता है। नंबर चार, जो लोग नाप तोल में कमी करें अल्लाह उनको कहत में मुब्तला करता है, और जो जकात नहीं देते अल्लाह उनसे बारिश को रोक लेता है। तो क्या ये भूल गए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इनको उठा खड़ा किया जाएगा? वो कब होगा? लियौमिन अजीम, बड़ा दिन, वो दिन बहुत बड़ा होगा। कयामत के दिन को बड़ा दिन क्यों कहा गया कि इन तमाम इंसान और जिन जो है इनका हिसाब लेने के लिए अल्लाह ताला बयक वक्त जो है उनको अपनी अदालत में बुलाएंगे, तमाम इंसान और जिन, हिसाब और सवाब के फिर अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। आप सबसे ज्यादा लोग कब देखती हैं? हज पे जब जाती हैं तो ठाठे मारता हुआ जो है वो ये इंसानियत का एक मजमा होता है। और ये जब कभी कोई मैच होता है, और ये वर्ल्ड लेवल पर जब मैच होते हैं तो वो कब होते हैं? ओलंपिक्स। तो उस वक्त क्या होता है, कितनी दुनिया जमा होती है ना, तो दुनिया को जमा करना कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं, फिर भी सारी दुनिया जमा नहीं हो सकती। तो लेकिन यौम अजीम, वो बड़ा दिन है, यौम यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन जबकि सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े किए जाएंगे। ये इतना बड़ा दिन है कि लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो अल्लाह के सामने खड़ा होना, इससे क्या मुराद है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़ा होना उस दिन होगा जिसमें ये लोग इतने ज्यादा पसीने में खड़े होंगे जो नीचे से लेकर आधे कानों तक होगा, जैसे कोई शख्स नहर में खड़ा हुआ हो। अगर किसी का पसीना नीचे से लेकर कानों तक पहुंच जाए, आधे कानों तक, तो क्या है? पानी में है, नहर में है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत वाले दिन सूरज मखलूक के इतने करीब होगा कि एक मील की मकदार के करीब फासला होगा। और फिर आपने क्या फरमाया कि पस लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में होंगे, ये पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की कमर तक होगा, और किसी के लिए ये लगाम बना होगा, इसके मुंह तक पसीना होगा। ये सही मुस्लिम की रवायत है। वो दिन बड़ा सख्त होगा। अपने जैसे इंसानों के सामने खड़े होकर हिसाब देना मुश्किल लगता है, बीवी शोहर के सामने, बच्चे वालदैन के सामने, तालिबे उस्ताद के सामने, नौकर चाकर मालकों के सामने, और जो दरबारी होते हैं बादशाह के सामने, बहुत मुश्किल होता है हिसाब देना। और लोग यौम यकूमुन्नासु अन्नास, सारी की सारी इंसानियत क्या होगी? यकूमु, खड़ी होगी, लिरब्बिल आलमीन, सारे जहानों के रब के सामने। कल्ला इन्ना किताब अल-फुज्जार लफी सिज्जीन। अब तो जो दिलाई जा रही है कि फिर जब लोग सब खड़े होंगे तो फिर होगा क्या? हिसाब किताब होगा। आयत नंबर 7 से लेकर 17 तक फुज्जार के अंजाम की तफसील बताई गई है। ये फुज्जार जो हैं, ये कौन है? कहा हरगिज नहीं, फिर कल्ला जो है ये आ गया। और आपको ये बात पता ही है कि कल्ला जब आता है तो डांट के लिए, कि ये लोग इनकार करते हैं कि कयामत नहीं आएगी। हाँ हाँ, कयामत तो आएगी, ये गलत कहते हैं, कल्ला हरगिज नहीं। इन्ना किताब अल फुजारी, किताब फुजार की, ये कौन सी किताब है? किरामन कातिबीन, जिसको तैयार करते हैं। या लमूना मा तफअलून, तुम जो करते हो लिखते हैं। तो फरिश्तों का तैयार किया हुआ अमाल नामा जो है, और वो किसका? अल फुजार का। फुजार फजर से है, और इसके मानी है फुजार के अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको फाड़ने वाला, क्योंकि फजरा के मानी होते हैं वसी पे माने पर फाड़ना। और जो है वो जो फुजार हैं ये क्या करते हैं? वसी पे माने पर दीन की नाफरमानी करते हैं, हर वक्त गुनाहों में मुनहमिक रहते हैं, गुनाहों से तायब नहीं होते। तो ये फुजार जो हैं लफी सिज्जीन, ये इनकी किताब, इनका नामा अमाल जो है वो सिज्जीन में है। वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुम क्या जानो कि वो सिज्जीन क्या है? किताब मरकूम, एक किताब है लिखी हुई। तो सिज्जीन जो है ये किसे कहते हैं? सीन जीम नून सिजन। सिजन जो है ये असल में जेल खाने को कहते हैं, कैद खाना। और अब यहां पे कहा जा रहा है कि उन मुजरिमों का जो अमाल नामा है ये सिज्जीन के अंदर रखा जाएगा। अब साथ ही कहा जा रहा है कि ये सिज्जीन है क्या? कहा कि ये एक लिखी हुई किताब है, किताब मरकूम। सिज्जीन एक लिखी हुई किताब है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि सिजीन के मानी है कैद खाना, जेल खाना। तो जैसे मुजरिम को सजा के लिए जेल में डाल दिया जाता है ना, इसी तरह सिजीन से मुराद वो मकाम या दफ्तर जहां बद किरदार लोगों के अमालनामे महफूज कर लिए जाते हैं, ताकि उन अमालनामों में, उनके रजिस्टरों में कोई कमी बेशी ना की जा सके। होता है ना कि बाज़ुकात, कभी आपने एक दफा एक औरत ने कहा था कि जो मेरा बच्चा है वो स्कूल में नहीं जाता। मैंने कहा, वो आपका बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? कहने लगी कि असल में जो है इनका, इन्होंने बुरे लोगों की सोहबत में ये बच्चे पढ़ गए, और अमेरिका में उस बच्चे ने पब्लिक स्कूल में जब छुट्टी हो चुकी थी रात या शाम के टाइम जो है, उसने अपने क्लासरूम में से वो जो पेपर दिया हुआ था ना, उसको निकालने की कोशिश की थी, चोरी करने की कोशिश की थी। वो चेंज करना चाहते थे पेपर, कि किसी तरह हम उसे, तो ये पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो अब उसकी वजह से ये स्कूल से कुछ साल के लिए निकाल दिए गए। अब किसी भी स्कूल में मेरा बेटा दाखिला नहीं ले सकता। औरत बेवा थी, शोहर फोत हो चुका था, और फिर देखो बाज़ुकात जिंदगी में भी ऐसा होता है, और बाज़ुकात फिर इस तरह औलाद जो है वो सताती है। तो अब क्या है कि जो भी दुनिया में भी जो ये पेपर्स और चीजें होती हैं, संभाल के रखी जाती हैं, ताकि तालिबे इल्म उसमें कोई कमी बेशी ना कर सके। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बुरे लोगों के अमाल है ना, उनको सिजीन में रखा जाता है, उनकी नामाए अमाल कैद खाने में है। और तुम क्या जानो कि वो कैद खाना क्या है? किताब मरकूम, ये किताब है लिखी हुई, रकम करना है ना। आप कहते हैं कि ये चीज जो है ये रकम है, ये चीज लिखी हुई है। तो यहां बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी किताब है जो कि तहरीर शुदा है, बड़ी ही जो है ये हिफाजत से है, और इस पूरा जो है वो रिकॉर्ड है जो कि एक लिखी हुई तहरीर है। जैसे सारा रिकॉर्ड तहरीर की शक्ल में महफूज है, तो मरकूम के मानी है बशक्ल तहरीर, ना इसमें कोई कमी है, ना इसमें कोई भूल है, ना इसमें कोई इजाफा है, ना इसकी हुज्जत में किसी शुबे की गुंजाइश है। किताब मरकूम, एक किताब है लिखी हुई। इससे आप अंदाजा कर सकती हैं कि किताब बड़ी हिफाजत से और बड़ी तंग जगह पर संभाल कर रखी हुई है। वैलुई यौमा दिल मुकज्जबीन, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, उस दिन झुटलाने वालों के लिए जहन्नुम की वादी है, तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। ये कौन सा दिन है? जो यौमिन अजीम है, अल्लज़ीन युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन। तो क्या झुटलाया करते थे? ये वो लोग थे जो रोजे जजा को झुटलाया करते थे, मानकर ही नहीं देते थे कि मरने के बाद जिंदा किया जाएगा और हिसाब किताब होगा। तो इंसान दुनिया में जितने भी गुनाह करता है और गुनाहों को छोड़ता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो रोजे जजा का इनकार करता है। जिसको भी ये पता है ना कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, ऑडिटिंग होगी, हो नहीं सकता कि फिर वो गुनाह करे। वमा युकज्जिबू बिही, और नहीं झुटलाता इसे, किसे? कयामत के दिन को। इल्ला मगर कुल्लू मोतदिन असीन, कुल्लू हर मोतदिन हद से गुजरने वाला है ना, उदू से है, दुश्मन के लिए आता है, और मोतदिन फिर कहते हैं जो हद से गुजर जाए, जिसका गुनाहों में इन्हमाक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हद से तजावज कर जाए गुनाहों में। मोतदिन हद से गुजरने वाला, असीम बदअमल है। तो असीम के फिर मानी क्या है? कि ये है वो शख्स जो के गुनागार है, गुनाहों में इसका दिल लगता है, जानबूझकर नेकियों से पीछे रहता है। चल सकता है, कर सकता है, फिर भी नेकियों के रास्तों में चलना नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो ये इसकी दूसरी बड़ी वजह है। तीसरी वजह क्या है? इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन, और जब इन्हें हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो कहता है असातीरुल अव्वलीन, ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं। तो असातीर जो है किसे कहते हैं? ये किससे उनको कहते हैं? कहानियों के लिए ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो बजाय इसके कि ये अल्लाह के कलाम और अल्लाह की जो बातें हैं ये उनको सुनकर अपने अमलों को बदलता, اور اپنی جو غفلت کی زندگی ہے ان پر پانی کے چھینٹے ڈالتا. یہ کہتا ہے کہ یہ اساطیر الاولین. تو اساطیر جو ہے استورہ اور استیطرتن اور استار, تین اس کے واحد ہیں اساطیر کے. اساطیر جمع ہے, ایک واحد کیا ہے استورتن, دوسرا واحد استیطرتن, تیسرا استارن. اور سطر کہتے ہیں وہ چیز جو کہ لکھی بھی ہو اور بڑی ہی جو ہے وہ لائن سے ہو, ترتیب سے ہو. کیونکہ کہانیاں قصے جو ہیں وہ تو حقیقت نہیں ہوتی نا, تو یہ جو ہیں ایسی سطور جو کہ ایک حقیقت ہیں, تو ان کو کہتا ہے کہ انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں, الاولین اول کی جمع ہے اولین, کہ یہ پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں, بے بنیاد واقعات کہہ دیتا ہے. اساطیر کا لفظ جو ہے ایسے واقعات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بے بنیاد ہوں, جن کی کوئی حقیقت نہ ہو, حالانکہ وہ مطلب لکھی بھی ہے لیکن ایسے کسی نے کبھی کسی وقت جو تھی وہ لکھ دی, تو وہ یہ کہہ کے اس کا انکار کر دیتا ہے. اچھا, جب انسان جو ہے قیامت کے دن کا انکار کرے اور گناہوں میں حد سے بڑھ جائے, اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے کلام کو جو ہے مذاق اڑا کر اس کو چھوڑ دے, پھر اس کے نتیجے میں دنیا ہی میں اس کو جو ہے ایک سزا ملتی ہے. وہ سزا آیت 14 میں بتائی گئی, کلا بل, ہرگز نہیں بلکہ, ران علی قلوبہم, زنگ ہے ان کے دلوں پر. کس چیز کا زنگ ہے؟ ما کانوا یکسبون, جو وہ کیا کرتے تھے. تو یہ ان کے عملوں کی کمائی ہے کہ اب ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. ران, را یا نون اس کا روٹ ہے, اور اس سلسلے میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے دل جو تھے جب عقیدہ توحید سے خالی ہو گئے, ان کے دلوں نے اللہ کے پیغام کو قبول ہی نہ کیا, رسول کا اقرار نہ کیا, آخرت جو تھا آخرت کو یہ مانا ہی نہیں انہوں نے. تو اب دل جو ہیں, دلوں کے اندر چمک کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دل جو ہیں شیشے کی مانند کیسے چمکنے لگتے ہیں؟ جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے, جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے دل جو ہیں وہ زندگی پاتے ہیں. اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے, کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو ہوا یہ کہ ان کے دل کو بڑی خوفناک قسم کی بیماری لگ گئی, اور یہ بیماری کس کی تھی؟ زنگ کی. دل جو ہے مسخ ہو گیا, اور حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل جو ہے اس پر زنگ لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے, استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو یہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے, اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. اور یہ روایت ہے ترمذی کی, اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ آخرت کا انکار, اور آیت نمبر 12 میں ان کا اللہ کی کتابوں کا انکار ہے نا, کیسے انکار پتا چلا؟ عملی طور پر. اور آیت نمبر 13 میں بھی کہ اللہ کی کتابوں کا جو انکار ہے, تو 12 رویہ بتا رہی ہے, اور 13 جو ہے اللہ کی کتابوں کا انکار پھر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. تو کسی صاف چیز پر جو دھبا لگ جائے تو اس کے لیے آتا ہے, جب انسان نیکی اور برائی میں تمیز نہ کر سکے. اور یہ کیا ہے جو زنگ جو دلوں پر لگا؟ ماں کانو یکسبون, یہ ہے ان کے ہاتھوں کی کمائی, یہ ان کے عملوں کی کمائی ہے. کلا انہم ربہم یومئذ محجوبون, ہرگز نہیں بے شک یہ لوگ ربہم, اپنے رب سے. اب تاکید ہے, ایک طرف ڈانٹ پھر تاکید کہ بے شک یہ لوگ اپنے رب سے, کسی اور کا رب نہیں, ان کا اپنا رب. یومئذ, اس دن قیامت کے دن, لمحجوبون, اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. محجوبون کا لفظ جو ہے یہ اسم مفعول ہے, اور حجبہ, حاجب جو ہے وہ محافظ نگران کو بھی کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے چوکیدار؟ اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس باہر والوں کو آنے نہیں دیتا, چوکیداری کرتا ہے نا, بیچ میں آ کے رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی طرح حجاب جب پہنتی ہیں तो क्या होता है, हिजाब जो है एक रुकावट बन जाता है कि बाहर वाले लोग और मर्द जो है वो आपको देख नहीं सकते। तो हिजाब, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि ये हैं वो लोग जो के यानी दुनिया में तो इनके गुनाहों की सजा है दिलों पर जंग, दिल नेकी में नहीं लगता, नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता, कुरान पढ़ने को नहीं चाहता, गलती कर ली है फिर भी ना माफी मांगने को दिल चाहता है ना माफ करने को दिल चाहता है, अपने गुनाहों को गुनाह लगते ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। और आखिरत में फिर इसकी क्या सजा मिलेगी कि आखिरत में ये वो बदकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह के दीदार से महरूम रखे जाएंगे, इन्हें अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा। ये समझते हैं कि दुनिया में भी इनको बड़ी इज्जत मिली और आखिरत में भी इनको बड़े दर्जे मिलेंगे, नहीं नहीं वहां तो ओट होगी, अपने रब से ये ओट में होंगे। और उस दिन जो है जो नेक लोग हैं जन्नत की बड़ी सबसे बड़ी नेमत जो उन्हें मिलेगी कि उनके रब का उन्हें दीदार करवाया जाएगा। लेकिन ये वो बदकिस्मत लोग हैं कि ये जो है वो अल्लाह के दीदार से महरूम रखे जाएंगे, एक रुकावट होगी। तो ये बात जो है ये बहुत ही डराने वाली है और बहुत ही परेशान करने वाली है कि उस दिन जो है गुनाहों की वजह से ये अल्लाह के दीदार से जो है महरूम रखे जाएंगे, और जन्नती जो होंगे वो क्या है, उन्हें अल्लाह का दीदार मिलेगा। ثم انهم لصالو الجحیم, फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। तो वसल, मुलाकात, मिलाप, अब ये दाखिल होंगे, लसालू जरूर दाखिल होने वाले हैं, जहीन जहन्नुम में, भड़कती हुई आग में। फिर क्या होगा, ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, फिर उनसे कहा जाएगा هَذَا الَّذِي, यही वो चीज है, ये वही चीज है, كُنْتُمْ بِهِ जिससे थे तुम तो تُكَذِّبُونَ, झुटलाया करते, कि ये है वो हकीकत जहन्नुम, ये है वो आखरत का अजाब, ये जिसे तुम झुटलाया करते थे। क्योंकि जब जहन्नुम का जिक्र होता था तो वो क्या कहते थे, असातीरुल अव्वलीन। अब इनसे कहा जाएगा कि ये असातीरुल अव्वलीन नहीं है, बेबुनियाद कहानियां नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत बनकर अब तुम्हारे सामने आ गई। अब यहां से जो है जो मुत्तकी और नेक लोग हैं उनका जिक्र जो है अब शुरू होता है। क्या फरमाया, अब दूसरा ग्रोह है, फरमाया कल्ला इन्न किताब अल अबरार लफी इल्लियीन, हरगिज नहीं, बेशक अबरार का नामा अमाल इल्लियीन में है। तो इल्लियीन का ऑपोजिट आपने पीछे क्या पढ़ा, सिज्जीन, और अबरार का ऑपोजिट आपने क्या पढ़ा, फुज्जार, अल फुज्जार अल अबरार। तो जैसे फज्जार, फुज्जार कौन है, वसी पैमाने पर दीन की नाफरमानी करने वाला, हर वक्त गुनाहों में मुनहमिक रहने वाला और गुनाहों से तौबा ना करने वाला, तीन बातें मुफस्सरी ने खास तौर पर लिखी हैं। और अबरार बिर से है नेकी, नेकी के काम, और कहते हैं कि बिर फिर वसी खुश्क जो है वो जमीन के टुकड़े को भी कहते हैं, वसी बहुत बड़ा और खुश्क जमीन का टुकड़ा, गोया के फिर नेकी के अंदर भी वुस्सत का तसव्वुर पाया जाता है। कहते हैं कि बिर दरअसल उस नेकी को नहीं कहते कि बस एक दफा कर ली, हर वक्त नेकी पर मायल रहने वाली जो तबीयत और खसलत होती है ना, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी नेकी का मौका आया वो फौरन उसको अंजाम दे। और फिर यहां पे जो कहा गया कि अल अबरार, तो वो शख्स है कि जो ऐसी खसलत रखता हो कि वसी पैमाने पर नेकी करे, जब नेकी का मौका आए फौरन उसको करना चाहे, और नेकी पर उसकी तबीयत हर वक्त जो है वो मायल रहे। तो ये हैं अबरार, और इनका नामा माल इल्लियीन में है। ये इल्लियीन क्या है, ऐन लाम वाव से ये लफ्ज निकला है, और यहां पर इल्लियीन जो है इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है ये पाक रूहों के रहने की जगह भी है, और पाक जो किताबें हैं, पाक जो अमाल नामे हैं, जो नेक लोगों के नेक अमाल नामे हैं, अच्छे अमाल नामों का दफ्तर, ये वो है। वमा अदराका मा इल्लियून, और तुम क्या जानो कि वो इल्लियीन क्या है, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, जैसे किसी को कहा जाए कि काश के तुम जानो, और तुम क्या जानो। जैसे जो है वो पहले सिजीन के अंदर हॉल का इजहार था, और यहां पे ये जो बार बार आ रहा है ना कि तुम क्या जानो, तो यहाँ पे अजमत और शान के इजहार के लिए है, किताब मरकूम ये लिखी हुई किताब है। तो क्या मतलब है इसका कि ये ऐसी किताब है कि जिसके अंदर ना कोई कमी बेशी हो सकती है, ना कोई भूल चूक हो सकती है, क्योंकि इसकी निगरानी अल्लाह ताला के खास मुकर्रम फरिश्ते कर रहे हैं, क्योंकि खास जगह पर है ना और तहरीर शुदा है। किताब मरकूम यशहदुल मुकर्रबून, यशहदुल मुकर्रबून इसके मानी है कि जैसे शीन हादाल शहादत से है, तो मानी क्या है कि ये जो अमाल नामे हैं इनके अमाल नामों की गवाही दी है किरामन कातिबीन ने, यालमूना मा तफअलून, दो किरामन कातिबीन ने, ना चीटिंग की जा सकती है, ना धोखा दिया जा सकता है, ना कोई कमी बेशी हो सकती है, तो ये उनका तहरीर करता है। और या फिर इसके मानी मुफस्सरीन ने ये बताए हैं कि अमाल नामों के पास हर वक्त जो है ना फरिश्ते मौजूद रहते हैं, यशहदुल मुकर्रबून, मुकर्रब फरिश्ते जो के पास ही रहते हैं हर वक्त, ये अमाल नामे उनकी निगरानी में हैं, हाजिर रहते हैं इनके पास फरिश्ते। तो जिस तरह इल्लीन कहते हैं कि ये एक ऐसा बुलंद मर्तबा मकाम है जहां पर नेक रूहें रखी जाती हैं, इसी तरह ये एक ऐसा बुलंद मर्तबा मकाम है जहां पे उनके अमाल नामों के रजिस्टर रखे जाते हैं ताकि कोई इसके अंदर जो है वो कमी बेशी न कर सके। और ये भी पता चलता है एक तवील हदीस में जिसके रावी हैं बरा बिन आजिब के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिज्जीन सातवीं जमीन के निचले तबके में है, इल्लीयीन सातवें आसमान में जेरे अर्श है, अर्श के नीचे है ये जगह, और जो है सिज्जीन कुफार और फुजार की रूहों का मुस्तकर है, मकाम है, ठिकाना, और इल्लीयीन मोमिनीन और मुत्तकीन की जहां पे रूहें रखी जाती हैं ये वो वाली जगह है। और जो है अहदीस से और आसार से हमें ये बात पता चलती है सिजीन एक मकाम खास का नाम है और कुफार और फुजार की रूहें वहां पे रखी जाती हैं और वहीं पर फिर सिजीन में उनके अमाल नामे भी रख दिए जाते हैं, महफूज कर दिए जाते हैं। और बड़ी जामे अमाल नामों की किताब है कि कोई शख्स जो है वो उसमें कमी बेशी नहीं कर सकता। और आप जो है अगर आप अहदीस का मताला करेंगी तो वहां भी आपको अंदाजा होगा कि सिज्जीन और इल्लीयीन जो हैं ये कैसे हैं। जिस तरह आप देखिए कि एक तवील हदीस से पता चलता है कि मोमिनीन की मौत का जिक्र करते हुए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मोमिनीन की मौत के वक्त फरिश्ते तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि रूह अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल, चुनाचे इसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मशकीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस जो रूह निकालने वाला फरिश्ता है वो उसे ले लेता है, इनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे हुए होते हैं पल भर भी इनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसे कफन और खुशबू में रख कर आसमान की तरफ चल पड़ते हैं। इसी खुशबू के मुतालिक फरमाया कि जमीन पर जो कभी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क पाई गई इस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी इनका गुजर होता है वो पूछते हैं ये कौन पाकीजा रूह है, उनको जैसे पता चलता है खुशबू और जो है तमाम, और वो इसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में वो बुलाया जाता था। बाद लोग नेक लोगों के बड़े अच्छे अच्छे नाम भी रख देते हैं ना कि फलां का बेटा फलां है, इस तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं, चुनाचे दरवाजा खोल दिया जाता है और वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं हत्ता के सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं और हर आसमान वाला फरिश्ता पूछता है कौन है, आया है कि बुलाया गया है, वो सारी बात। हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुख्सत करते हैं, उसके एजाज में फिर दूसरे आसमान तक जाते हैं, यहां तक कि वो सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताबे इल्लीयीन में रख दो। और काफिर की मौत के बारे में फरमाया कि बिला शुबा जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखरत का रुख करने को होता है तो स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से इसके पास आते हैं जिनके साथ टाट होते हैं और इसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहां तक उसकी नजर पहुंचती है, फिर मलिकुल मौत तशरीफ लाते हैं हत्ता कि इसके सर के पास बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं ए खबीस रूह اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، چھپنا چاہتی ہے۔ لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے۔ کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اللہم لا تجلنا منہم، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے کہ فوراً اسے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ لاش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون خبیث روح ہے، اور اس کا برے سے برا وہ نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ دنیا کہتے ہیں نا قاتل، زانی، شرابی، جھوٹا، بدکار، اور فلاں اور فلاں اور فلاں، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر فلاں پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور آپ سورۃ اعراف میں پڑھی چکی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ کبھی وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، لہٰذا یہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتے۔ پھر اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پٹک دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، تو یہ جو علیین اور سجین ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے نیک لوگوں کی، ابرار کی، کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک ابرار جو ہے وہ نعمتوں میں ہیں، نعمتوں بھری جنت میں، اور وہاں پہ راحت ہی راحت ہے، نعمتیں ہی نعمت ہیں، اور نعمت کا لفظ اسم جنس ہے۔ علی الارائک ینظرون، اونچی مسندوں پر نظارے کرتے ہوئے، ارائک اریکا تن کی جمع ہے، اور گویا کہ وہ مسندوں پر، تختوں پر، اونچی جگہ پر بیٹھے ہوں گے، اور کیا کر رہے ہوں گے، جب انسان اونچائی پر بیٹھا ہوتا ہے تو نظارہ کرتا ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم پہچان لو گے ان کے چہروں سے، کیا پہچانو گے، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی خوشحالی تر و تازگی۔ اور نظرت کا لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے رونق کے لیے، تر و تازگی کے لیے۔ تو اتنی نعمتیں ہیں، اتنی آسائش ہے، اتنی تر و تازگی ہے کہ چہرے کو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ جیسے دنیا میں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں پر بھی لمحوں تازگی اور شادابی پائی جاتی ہے، کیونکہ آسانیاں، آسائشیں، سہولتیں، دنیا کی نعمتیں انہیں اتنی فراوانی سے ملتی ہیں کہ چہرے کو دیکھ کر جو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حال ہے۔ اب اہل جنت پر اتنی جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی کہ اتنی ان کی عزت اور تکریم کی جائے گی کہ اس کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہوں گے، حسن و جمال، رونق، بہجت، اس کو، اس سے وہ پہچان لیے جائیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون مضارع مجھول ہے، پلایا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا، بڑا اہتمام ہے، بڑی ان کی آؤ بھگت ہے، بہترین میزبانی ہے، کرنے والا اللہ ہے، پلائی جاتی ہے ان کو، من رحیق، اور رحیق کہتے ہیں خالص شراب کو، کیونکہ شراب تو بہت سی طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن کون سی شراب جو ہے ان کو پلائی جا رہی ہے، ایسی شراب جو کہ رحیق ہے۔ اور رحیق کا لفظ جو ہے آپ نے کب سنا تھا، رحیق المختوم، جب آپ نے جو ہے وہ کتاب کا نام جب آپ نے سنا تو اسی وقت آپ نے جو ہے اس کے بارے میں سنا، لیکن جس نے بھی قرآن پڑھا ہوگا تو پہلی دفعہ تو اس نے کبھی سنا ہوگا جب اس نے قرآن کو حفظ کیا ہوگا، اور خاص طور پہ تیسواں پارہ تو لوگ کر ہی لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے رحیق، اور را ہا قاف، ایسی شراب کو کہتے ہیں خالص، عمدہ، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو رحیق۔ پھر دوسری بات ہے مختوم، یہ سب مفعول ہے اور اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں، کہ اس کی مہر کرنے کی چیز۔ اب آپ دیکھیں जो खालिस शराब होती है, कोई चीज भी खालिस होती है जब उसको भर दिया जाता है ना, तो भरने के बाद फिर उसको बंद कर दिया जाता है, जैसे हर चीज का फिर खात्मा कर दिया जाए। जैसे खाना तैयार हो जाता है, पक जाता है बिल्कुल, अब चूल्हा बंद कर देती हैं कि अब ये बिल्कुल खात्मा मुकम्मल हो गया है, अब बिल्कुल ठीक है, कुछ इसको नहीं करना। फिर क्या करती हैं, फिर आप उसको सील्ड भी कर देती हैं, जैसे उसमें आप अल्मोनियम और बहुत सी चीजें लगाकर बिल्कुल पैक करती हैं। इसी तरह दुनिया में भी जो शराब होती है आमतौर पर क्या होती है, बड़ी सील्ड होती है। जब पहली तो ये है कि वो मुकम्मल बनकर जब तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद उस पर मोहर लगा दी जाती है, सील्ड कर दी जाती है। आप देख लेंगे बहुत सी दवाइयां हैं और बहुत से खाने पीने की जो चीजें हैं, तो वो सील्ड होते हैं, बंद होते हैं। अगर वो खुले रह जाएं तो खराब हो जाते हैं ना, कोई चीज भी उसके अंदर आ सकती है। तो यहाँ पे मखतूम के दो मानी है, एक तो खात्मा, दूसरा मोहर लगा दी गई, मखतूम के इस पर मोहर लगी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहर किस चीज की है, खितामहु, इसकी मोहर है मिस्क। मोहर आम मोहर नहीं है, इस पर जो मोहर लगाई गई है ये मोहर है मिस्क की। और आप देख लें कि मिस्क किसे कहते हैं, मिस्क जो है ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके ऊपर जो मोहर लगाई जाती है, जो इनको ये अबरार को जो अब बैठे हुए हैं मजे से हैं और इनको वहां पे पीने के लिए जो कुछ दिया जाएगा, तो अब मोहर लगा दी गई इन पर खुशबू की। तो कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे बेहतरीन मुश्क है, सबसे जो अच्छी खुशबू है, उसके लिए ये मिस्क का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको जो खुशबू दी जाती है और जो इसके ऊपर खुशबू लगाई जाती है, अब वो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, आप ये भी इस बात का भी आप अंदाजा करें कि बाज़ औक़ात जो है मशरूबात में बहुत सी खुशबुओं की मिलावट की जाती है, मलोनी की जाती है, तो वो खुशबुएं उसके अंदर क्यों मिलाई जाती हैं, ताकि उसकी जो लज्जत है, जो उसका टेस्ट है, उसमें उसमें इजाफा हो जाए। तो वो जो खुशबू होती है फिर वो क्या करती है कि वो दिलों को जो है वो मोह लेती है, दिमाग के अंदर एक ताजगी और तरावत जो है वो पैदा करती है। और बाद लोग कहते हैं कि मिस्क का तर्जमा तो कस्तूरी ही है, कस्तूरी, कस्तूरी से भी इसका तर्जमा करते हैं। और क्या है कि जैसे बड़ी ही अच्छी खुशबू जो है उसके लिए फिर ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो खुशबुएं भी बहुत सी हैं, लेकिन अब इनको जो पीने को मशरूब दिया जाएगा, खालिस शराब है, मोहर लगी हुई है, और दूसरी बात यह कि मोहर जो इस पर लगाई गई है ना, किसी कागज किसी चीज की नहीं, इसको खुशबू से सील किया गया है। कि आमतौर पे जो दुनिया की शराब है, जो ही उसका ढक्कन खोले तो उसमें एक बदबू का ताफुन जो है, उस सड़ांद उसका एक फपका आता है, लेकिन इसको जब खोला जाएगा तो इसके अंदर से जो है वो कस्तूरी की खुशबू होगी। दुनिया में जो अच्छी से अच्छी खुशबू का इंसान तसव्वुर कर सकता है, तो वो खुशबू जो है फौरन ही इनको जो है वो आने लगेगी। तो ये क्या है, ये अल्लाह की नेमतों का जिक्र है, ये जन्नत की जो नेमतें हैं उनकी उनका तारुफ करवाया जा रहा है। और क्यों करवाया जा रहा है, ताकि लोग जो हैं वो जन्नत की तैयारी करें और जन्नत का उनके अंदर शौक हो। आप कभी खाना किसी रेस्टोरेंट से खाकर आते हैं तो आप कहते हैं कि उसके अंदर इतनी अच्छी खुशबू थी, और उसका वैसे भी उसके अंदर से बहुत अच्छी, यानी खाने से भी खुशबू आ रही थी, वैसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, फलां से मैं मिली उसके लिबास से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, उसके दांतों से खुशबू आ रही थी, है ना। और बाद लोग तो सूखे हुए गुलाब भी किताबों में रख लेते हैं, क्यों, कि उसमें से खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू, खुश भी हो जाते हैं तो खुशबू आती है, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या है कि खितामहु मिस्क, जिस पर मुश्क की मोहर लगी हुई होगी, तो मोम या मट्टी की बजाय मुश्क की मोहर से उनको बंद किया जाएगा, और ये है एक नफीस तरीन चीज जो उनको पीने को दी जाएगी। वफीजा लेकफल यतनाफसिल मुतनाफिसून, और ये है वो चीज फल यतनाफिस जिसके लिए बाजी ले जानी चाहिए, किनको, अल मुतनाफिसून, बाजी ले जाने वालों को। तो मुतनाफिस जो है ये तनाफुस से है, और वैसे जैसे नफ्स से है, लेकिन तनाफुस जब हो तो इसके मानी है रगबत रखना, और फिर रगबत का लफ्ज जो है, ये एक तो है ना कि जैसे अच्छी चीज की रगबत रखना, और कभी जो है ये हसद के मानी में भी इस्तेमाल होता है, नफीसा। नफीसा तनाफुस जो है नफीसा से है, हसद करना, और नफसा फिल अमर किसी काम की तरगीब देना, और तनाफुस ऐसा बाब है कि जिसमें कुछ लोगों का होना जरूरी है कि बहम हसद कर रहे हैं, बहम फखर कर रहे हैं, तो रकीबाना जज्बे से एक दूसरे से आगे बढ़ने की रगबत करना। तो रगबत, रगबा आम लफ्ज है, किसी चीज के हुसूल की दिल में ख्वाहिश करना, उसके लिए कोशिश करना। फायदा फरख्ता फनसब वाइला रब्बी का फरगब। लेकिन जब तनाफुस का लफ्ज आ जाए तो अच्छे कामों में रगबत में मुकाबले को कहते हैं तनाफुस। जैसे होता है ना कि जो है बाज लोग जो है वो नेकी के कामों में एक दूसरे से जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर भी तनाफुस जो है वो इस्तेमाल किया गया कि लोग जो है वो दुनिया की रौनकें जो हैं उसमें तेजी दिखाते हैं, तो इसमें तेजी दिखानी चाहिए, नेकी के काम करने में तनाफुस यानी मुसाबकत इख्तियार करनी चाहिए ताकि फिर जन्नत मिल सके। तो यहां पे बताया जा रहा है कि कौन सी चीजें हैं जिसमें एक दूसरे का मुकाबला करो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ये है क्या यहां पे इसको जो है निशानदेही की गई, वफीजा लेका फल यतनाफसिल मुतनाफिसून। तो नेकी के लिए दौड़ करना ये वही चीज है, सारे उला मगफिरत मिन रब्बिकुम जन्ना, और आपने पढ़ा था साबिकु इला मगफिरत मिन रब्बिकुम। तो नेकी के कामों में दौड़ना, और ये इतना आसान नहीं है, तो जो कीमती चीज होती है उसी को नफीस भी कहते हैं। नफीस आप लफ्ज बोलती हैं ना, वो भी इसी से है, नफीस किसी चीज को अजीज समझना और फिर उस पर बुखल करना। तो नेकी के कामों में दौड़ना चाहिए, और सारी जिंदगी हजरत उमर हजरत अबू बकर का मुकाबला ही करते रहे, सारी जिंदगी करते रहे, और हर ऐसे शख्स से वो मुसाबकत करते थे जो नेकियों में आगे बढ़ता हुआ उसको नजर आता था। तो ये एक चीज, इसकी जरूरत है और इसकी कमी बहुत है हमारे अंदर। फिर इसके बाद जो है फरमाया वमिजाजहु मिन तस्नीम, और इसमें मलूनी है, अमेजिश है तस्नीम की। तो मिजाज जो है नीम जे जीम जो है ये लफ्ज है इसका रूट, और इसके मानी होते हैं मिला देना। तो मजा जा होता है कि मशरूब में कोई चीज मिलाना, जो चीज किसी मशरूब में मिलाई जाए उसे मिज या मिजाज कहते हैं। तो बदन के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें वहां मिल जाती हैं तो उसे भी मिजाज शरीफ कहा जाता है ना, मिजाज। तो अब यहां पे भी क्या है कि उसके अंदर मिलाया जाएगा मिन तस्नीम, तस्नीम में से। अब तस्नीम नाम तो आप सभी रखते हैं, पता है इसकी असल हकीकत क्या है, बड़ी खूबसूरत क्या हकीकत है, ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि नहर का नाम है। लेकिन इसको क्यों नहर कहते हैं, कहते हैं कि तस्नीम का रूट है सीन नून मीम, और ये बुलंदी के लिए आता है, ऊंट की कोहान को भी कहते हैं, ऊंट की कोहान के लिए। पीछे आपने पढ़ा था ना जो पहली सूरत पढ़ी, सूरत अल बकरा वगैरह पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा था कि है ऊंट की कोहान का आपने लफ्ज पढ़ा था, हाँ, कि ये ऊंट की वैसे ही कोहान है कुरान की, जैसे कुरान का अमूद है, तब आपने पढ़ा था। बहरहाल बुलंदी के मानी है, ऊंट की कोहान को कहते हैं जो उसके जिस्म से बुलंद होती है, क्योंकि ऊंट की कोहान उसके सारे जिस्म से ऊंची होती है, तो उसे सिनाम कहते हैं, सिनाम। कब्र के ऊंचा करने को भी तस्नीमुल कुबूर कहा जाता है। अगर आपने पहले ये सुना होता कितने परेशान हो जाते कि एक तरफ जन्नत की नहर और दूसरी तरफ जो है कब्रों को भी तस्नीम, ये क्या मानी हुए, लोग फिर बड़े परेशान होने लगते हैं। तो जो कब्रें ऊंची होती हैं उनको कहा जाता है तस्नीमुल कुबूर। मतलब ये है कि तस्नीम शराब की अमेजिश होगी जो जन्नत के ऊंचे इलाकों से एक चश्मे के जरिए से आएगी। अब चश्मे बहुत से होते हैं, कुछ चश्मे ऊंचाई से आते हैं, और जो चश्मे जितने बुलंदी से आते हैं उतने ही वो साफ सुथरे निथरे भी होते हैं, माइन महीन होता है उनके अंदर, माइन महीन। तो कहते हैं कि ये जन्नत की बेहतरीन और आला शराब है तस्नीम। और बास तो ये कहते हैं कि शायद ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ऐसा चश्मा है कि जिसके किनारे बैठकर मुकर्रबीन इस शराब से लुत्फंदोज हो रहे होंगे, और अब जो उनको पीने को दी जा रही है, रहीकुम मख्तूम है, खितामहू मिस्क है, व मिजाजहू मिन तस्नीम, और उसकी उसके अंदर जो है वो मलूनी है, अमेजिश है। आईन यशरबू बिहल मुकर्रबून, ये है एक चश्मा, आईन चश्मा, यशरबू पियेंगे बिहा इससे, अल मुकर्रबून मुकर्रब लोग, मुकर्रब की जमा है मुकर्रबून, और ये मुकर्रबीन कौन है, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते रहे, जो रसूल जो थी उसकी सोहबत का कुर्ब हासिल करते रहे, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की किताबों का कुर्ब हासिल करते रहे, और सारी जिंदगी जो है इस बात के तहत उन्होंने जिंदगी बसर की कि कौन से काम करें और कौन से छोड़ दें, यानी अल्लाह के पसंदीदा काम करने वाले और अल्लाह के नापसंदीदा कामों को छोड़ देने वाले, मुकर्रबीन। तो मुकर्रबून जो है वो जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे ही नहीं मिलेगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है ये अंजाम बताया जा रहा है, और ये अंजाम 29 से लेकर 36 तक ये उन लोगों की तस्वीर खींची गई है जो काफिर है और अपने हाल में मगन है और अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यधकून, बेशक ये लोग अजरमू जिन्होंने जुर्म किया, कानू थे, मिनल्लज़ीना आमनू उन लोगों का जो ईमान लाए, यधकून मजाक उड़ाते, तो दहका का मतलब होता है हंसना खेलना ना, तो मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाया करते थे। आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि लो 100 चूहे खाकर बिल्ली अब हज को चली है, और लोग कहते हैं लो जी हूर परी को किसी ने देखा नहीं, सारी जिंदगी तो यूं ही फिरती रही, अब इसने जो है ना पर्दा करना शुरू कर दिया, अपने आप को बड़ी हसीन समझती है, और फिर ये कि कभी पर्दे पर बात, और कभी अगर कोई किसी को दीन की बातें करें तो कहते हैं लोग घर की खबर नहीं, और आप देख रहे हैं कि दीन की बड़ी वो तबलीग करती है, या फलां दीन की बड़ी तबलीग करता है, या फिर ये कि फलां को हमने देखा है, फलां को आपने देखा है। तो उस जमाने में अहले मक्का मजाक उड़ाया करते थे, हर दौर में नबियों का ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाया गया, आपने कुरान में कितना पढ़ा के मजाक उड़ाया गया, अंबिया का मजाक उड़ाया गया, और यहाँ पे क्या है, मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे, ये इनका पहला जुर्म। अच्छा, मजाक उड़ाने का इनका तरीका क्या था, यदहकून हंसते थे, वाइजा मर्रू बहिम जब उनके पास से गुजरते, यतगामजून तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारे करते। तो गम जो है इसके मानी होते हैं पलकों और अबरुओं से इशारा करना, एक दूसरे को अपनी पलकों और अबरुओं से इशारा करके उनकी तहकीर करना और उनके मजहब पर लान तान करना। और ये बड़ी सख्त बीमारी है कि आंख के इशारों से घाव किए जाएं, जख्म, तीर और तलवार के घाव जो है ना वो भी गहरे होते हैं, लेकिन ये आंख के इशारों के जो घाव होते हैं ये उससे भी ज्यादा गहरे होते हैं। क्यों? इनके अंदर हकारत और जिल्लत जो है ना वो पाई जाती है, और इंसान जो है फिर उसको भूलता नहीं है। और आप इस बात को सूरत अलहुमजा में भी पढ़ चुकी है ना, कि सूरत अलहुमजा में अल्लाह ताला इसकी मंजर कशी करते हैं और फिर साथ ही तबाही की जो है उनको वईद सुनाते हैं। वईलुल्ली कुल्ली हुमजतिल्लुमजा, तो ये कौन से लोग हैं जो के दूसरों के ऐप टटोलते हैं और फिर उसके बाद उनके अंदर हम्ज और लम्ज की बीमारी पाई जाती है, तो वो भी जो है यतगामजून की एक शक्ल है। वाइजन कलबू इला अहलिहिमुन कलबू फकीहीन, और जब वो पलटते कहां, इला आलिम अपने घर वालों की तरफ, इन कलबू तो वो पलटते थे, फकीहीन हंसी करते हुए मजे लेते हुए पलटते थे। असल में फकीहीन फकीहून की जमा है, जैसे आपने इसके दो मानी पीछे भी पढ़े कि फवाके के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना, एक तो होता है कि फल खाना, तो फल खाना क्या है कि मजे करना, फ्रूट वगैरह ड्राई फ्रूट लज्जत के लिए होता है, मजे के लिए पेट नहीं उसे भरा जाता। दूसरी तरफ जो है इंसान के पास आम तौर पे वक्त नहीं होता, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि वो आराम से बैठा हुआ आपस में खुश तबई में है, एक दूसरे से हंसी कर रहा है, बातें कर रहा है, बातों की लज्जत। और यहां पे फकेहीन के मानी है इतराना, हंसी उड़ाना, कि ये जब घरों में जाते थे तो घर में जाकर आपस में घर वालों के साथ भी अहले ईमान का मजाक उड़ाते थे, फलां के खूब लते लिए, आज मैंने फलां को खूब लिताड़ा, खूब उसको जो है मैंने सुनाई और बड़ी बनती है नमाज पढ़ने वाली और कुरान पढ़ने वाली और पर्दा करने वाली और हलाल और हराम में तमीज करने वाली। ये वही बात है जो सूरत कयामा में भी आप पढ़ चुकी कि वला किन कज़्ज़ब व तवल्ला थुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता। तो वही बात है कि ये घरों में भी जाकर जो थे दिन भर जो बाहर करते थे ना गाहेकीन, जैसे यदहकून और यतगामजून, तो दिन की महफिलों का मंजर क्या है कि फिर घरों में भी तो उसका जिक्र होता है ना, तो घरों में भी उसको भूलते नहीं थे। वाइजा रहूं, और जब वो उनको देखते किन को, अहले ईमान को, तो ये जो मुजरिम लोग थे पालू कहते इन्ना हाउलाई लदालून, कि ये हैं बहके हुए लोग। कुरान तो दालीन उन लोगों को कहता है ना जो यहूदो नसारा की रविश पर चले, जो अपनी मनमानियां करें, तो कहा कि फिर ये आपस में कहते थे कि ये हैं जो कि गुमराह हैं, ये हैं जहन्नुम का ईंधन बनने वाले। तो अहले मक्का भी मुसलमानों के ईमान को देखकर, इनकी आखिरत की तैयारियों को देखकर उन्हें कहा करते थे कि ये बेदीन लोग हैं, ये गुमराह हैं, हमारे अबाओ अजदाद के दीन के खिलाफ चल रहे हैं। तो उसी की यहाँ पे निशानदेही की गई है, वमा उरसिलू अलैहिम हाफिजीन, हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। इनको फरिश्ते थोड़ी बनाया था, ये बताया जा रहा है कि ये काफिर मुसलमानों पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे कि ये मुसलमानों के हाल अहवाल को देखते उन पर तबसरे करते कि ये क्या कर रहे हैं। فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे हैं। कहां पे हंस रहे हैं? पीछे आपने आयत 23 में पढ़ा ना कि जन्नत के अंदर चले गए हैं, अलल अराय की यंजुरून, कि वहां पे नजारे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज अहले ईमान काफिरों पर हंस रहे हैं, कैसे, अलल अराय की यंजुरून, मसनदों पर बैठे हुए, बुलंदियों पर बैठे हुए, दूर से उनको जहन्नम में ये काफिर नजर आ रहे हैं, जहन्नमी नजर आ रहे हैं। आज इनको इन पर हंसी आ रही है, हल सुविबल कुफारु मा कानू यफअलून, हल सुविबल कुफारु, क्या मिल गया सवाब काफिरों को, मिल गया ना काफिरों को बदला, मा कानू यफअलून, दुनिया में वो जो किया करते थे, जो वो अमल किया करते थे उनके अमाल का पूरा पूरा बदला इन्हें दे दिया गया। तो इनकी बदतमीजियां, इनका हंसना, इनका मजाक उड़ाना, इनकी सारी हरकतों का जो है वो बदला इनको जहन्नुम मिल गया। अब जल रहे हैं, अब जो है वो जहन्नुम के अंदर हैं, अब सख्त सजा के अंदर हैं। कैसा हुआ इनका अंजाम? तो ये है सूरत अल मुतफ़िफ़ीन, जो हमें जो है वो बताती है कि अगर मामला ठीक ना हो, सिर्फ इंफरादी नहीं इज्तमाही भी, कि जब कौमें तिजारत में बिगाड़ करती हैं और जब कौमों के अंदर इमानत की बजाय खयानत पैदा हो जाती है, तो खयानत का वबाल जो है उन्हें ले डूबता है, हत्ता कि फिर वो जहन्नुम में चले जाते हैं। तो जहां पे अकायद को दुरुस्त करने की जरूरत है, वहीं पे अपने मामलात भी ठीक करने की जरूरत है। इसी तरह जैसे कोई घर बेच रहा है, अब घर बेचते वक्त वो क्या करता है, दलालों को पेंट के जरिए छुपा दे, जो भी घर के अंदर कमी बेशी होने वाली है, वो चाहता है कि जो खरीदने वाला है उसको पता ना चले। तो ये भी जो है वो गुनाह की बात है। पूरी जिंदगी पर अल मुतफ़िफ़ीन जो है इसको फैलाया जा सकता है। मामलात अच्छे होने चाहिए, हुकूकुल इबाद की फिक्र करें, हुकूक अल्लाह की फिक्र भी करें, और हुकूकुल इबाद में जो कमी अगर करता है तो जब तक बंदे उसको माफ ना करें अल्लाह उनको कभी माफ नहीं करेगा। तो उनके लिए तबाही से ये आयत शुरू हुई और इख्तिताम भी इसी पर है कि वो लोग तबाह हो गए, अकीदे भी कमजोर थे और मामलात भी कमजोर थे। तो अल्लाह ताला हमें समझ दे, शऊर दे, और आज का मुसलमान जो है वो क्या करे कि एक बेहतरीन मुसलमान बने। कैसे बन सकता है कि बेहतरीन ताजिर बने, और रसूल अल्लाह ने भी तिजारत की। ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की कंपनी थी? बर्तानिया की कंपनी थी, तिजारत करने हिंदुस्तान की और फिर हिंदुस्तान पर हुकूमत कर ली, आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा लिए। इसी तरह मुसलमान स्पेन में दाखिल हुए, मगरिब की दुनिया में कैसे दाखिल हुए, तिजारत करने, कुछ अरबी लोग, और फिर मगरिब की दुनिया जो थी वो इस्लाम से रोशनास हुई। तो ये जो तिजारत है ना, इसके जरिए इस्लाम फैलाया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करने के लिए गए थे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल लेकर, और वो इतनी मुतासिर हुई जब बेवा हो गई, उम्र का इतना फर्क था, इतना उम्र का फर्क, इतनी अमीर, इतनी खूबसूरत, मक्का के बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आए, लेकिन किसी को कबूल ना किया। आपकी तिजारत से इतनी मुतासिर हुई कि आपके आपका जो रिश्ता था उसको कबूल कर लिया। तो ये तिजारत में सच्चाई और निथरावा और निखरावा होना रिज़्क़ में बरकत का जरिया बनता है, और इसके साथ साथ इस्लाम जो है उसको फैलाने का जरिया भी बनता है कि दुनिया भी मिल गई और साथ साथ आखिरत भी मिल गई। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु।